यूं तो पूरे शहर में जगह की तंगी थी, पर उनके मकान में और भी ज्यादा, क्योंकि बिना किसी योजना के बच्चे आते गए थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, कमरे छोटे हो रहे थे। दोनों कमरे सामान से ठसाठस भरे थे। हालत ये थी कि अगर एक बनियान भी ढूंढनी हो तो अलमारी का कुल सामान निकलवाना पड़ता, तभी बनियान बरामद होती। बानी का पति इससे अच्छा मकान किराए पर ले सकता था, लेकिन उसे ऐसी रद्दोबदल पसंद नहीं थी। अब जब कलकत्ता में मकानों के किराए आसमान छू रहे थे, मकान बदलना बेवकूफी होती। ये मकान बड़े मौके की जगह बना था। यहां से बच्चों का स्कूल पास था, अस्पताल, बैंक, डाकघर, कोतवाली पास थे, बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड पास थे। फिर पुराना और खस्ता हाल होने के कारण सस्ता भी था। लेकिन इस मकान में संबंधों के कोमल और गोपन भावों की अभिव्यक्ति का स्थान नहीं था। बानी और उसके पति का कोई अलग अकेला कमरा नहीं था। बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें अलग सुलाना भी एक सजा थी। कमरे पास पास थे। बच्चे बारी बारी से रोते, गीला करते या यूं ही मिनमिनाते। सारी रात बच्चे माँ की और माँ बच्चों की टोह लेती रहती। लेकिन इस तरह बानी बेतरह अकेली छूट जाती। सुबह 8 बजे पति फैक्ट्री चला जाता और शाम 6 बजे तक बानी का समय सिर्फ बच्चों के साथ बीतता। इस बीच वो बच्चों से इस कदर अघा जाती कि उसका मन होता अपने बच्चे किसी को उधार दे दे। हफ्ता दर हफ्ता वक्त इसी तरह गुजर रहा था। वे बहुत कम घूमने जाते। बानी के पति में बोर न होने की अद्भुत क्षमता थी। केवल उसकी सहन शक्ति परखने के लिए बानी कई बार रोज एक ही सब्जी बनाती रहती, कभी बैगन का भरता, कभी माछेर छोल। पति कुछ न कहता, चुपचाप खाना खा लेता। उसे यूं ठंडा देखकर बानी अंदर तक उबल जाती। दरअसल इतने वर्ष बानी के पति ने अपना जीवन नौकरी जमाने, पदोन्नति कमाने और पैसा बचाने में झोंक दिया था। वो बेहद कायदे से चलने वाला आदमी था। फिजूल की भावुकताओं में उसका कोई यकीन नहीं था। पत्नी के प्रति अतिरिक्त उत्साह दिखाना उसे बचकानापन लगता था। वो प्रेम का अर्थ दायित्व और दायित्व का अर्थ गंभीरता मानता था। अब जब नौकरी, बच्चे, बीवी सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त थे, उसने अपनी सारी बचत एक अच्छे हवादार मकान पर लगा दी। आवास विकास योजना के अंतर्गत ये एक 4 कमरों का मकान था, जो मध्य वर्ग के लिए बनाई गई एक बस्ती में स्थित था। मकान बस्ती में बने सैकड़ों मकानों जैसा ही था, सिर्फ नंबर से स्वामित्व स्थापित होता था। पर उसमें वो सब था जिसकी एक परिवार को चाह रहती है। सुंदर कमरे, बरामदा, आगे थोड़ी सी खाली जगह, पीछे क्यारी के लिए थोड़ी सी कच्ची जगह, एक की जगह 2 बाथरूम और बड़ी सी रसोई। पहली नजर में ही ये मकान उसे भा गया। फिर भी उसने काफी सोच विचार कर निर्णय लिया। जिस दिन बानी को उसने मकान की चाबी थमाई, उसने सोचा था ये घटना पत्नी के सामने एक चमत्कार की तरह आएगी। चाबी उसे देने के बाद वो कुछ देर प्रसन्न चित्त मुस्कुराता रहा। बानी ने बिना किसी उत्साह उत्तेजना के पूछा, ये क्या है? हमारा मकान B314। क्या ये हमारा मकान नहीं है जिसमें हमने इतने साल निकाल दिए? नहीं, ये किराए का मकान है, पराया। वो हमारा अपना है, खुद का। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ज्यादा जरूरी है कि आदमी खुद का हो। तुम हर समय फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देती हो। ये तो नहीं कि चलकर देख लो मैंने कितने कसाले से ये मकान कमाया है। सो तो मैं जानती हूं, मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा। वे सपरिवार मकान देख आए। गृह प्रवेश का दिन तय हो गया। बानी के पति ने दिल खोलकर मेहमानों का स्वागत किया। बच्चे बेहद खुश थे कि उन्हें अलग कमरा मिल गया। उनका पिता खुश था कि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया। बानी का मन डूब रहा था। कितने वर्तमान अरमानों को कुचलकर भविष्य के लिए ये आधार बनाया गया था, बानी ही जानती थी। अब तक का जीवन एक आश्रम की सख्ती और सादगी से जिया गया था। अब उसका पति मेहमानों के आगे हंस रहा था, जबकि आधा जीवन उसने कभी मुस्कुराने की भी जरूरत नहीं समझी थी। बानी की हर जरूरत, बच्चों की हर फरमाइश को अब तक केवल घुड़कियों से पूरा किया गया था। मेहमान सब विदा हो गए, बच्चे भी थक कर सो गए। बानी का पति अभी भी उमंग में था। उसने पत्नी से कहा, तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा लाकर रखा है, आओ दिखाऊं। बानी को विश्वास न हुआ। इस गंजे होते हुए आदमी से अब उसे कोई उम्मीद न थी। इतने वर्षों में कितने पर्व, त्योहार, सालगिरह आई और चली गई, इसे तोहफे का कभी ख्याल तक न आया। बानी ने मन ही मन सोचा, ये क्या तोहफा देगा, ज्यादा से ज्यादा किसी नई बीमा पॉलिसी का कागज या 100-200 रुपल्ली का कोई ऐसा कैश सर्टिफिकेट जो 20 साल बाद परिपक्व हो। वो बड़े बेमन से अंदर के कमरे में गई। बगल के बॉक्स रूम का छोटा ताला खोल उसके पति ने बिजली जलाई और कपड़ा हटाकर कहा, देखो। ये एक कोरी चमचमाती श्रृंगार मेज थी, जिसमें बड़ा सा दर्पण लगा था। नए मकान की नई दीवारों के बीच रखी नई नकोर श्रृंगार मेज विज्ञापन की तरह सुंदर लग रही थी। उसका डिजाइन काफी आकर्षक था तथा दराज और टॉप सब सफेद माइका के बने थे। एक लंबे अरसे बाद बानी ने अपने को आज आदमकद आईने के आगे खड़ा पाया। लेकिन ये क्या, ये वो किसे देख रही थी? उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, नहीं, उसके आसपास और कोई औरत नहीं थी। ये वही थी जिसका प्रतिबिंब इस वक्त दर्पण में पड़ रहा था। परेशान पस्त चेहरा, रूखी निस्तेज आंखें, सूखे होठ, कनपटी पर चंद सफेद बाल और झुर्रियां पड़े हाथ, देह के आरोह अवरोह सब गायब थे। बाकी थे ढीले कंधे, चपटा वक्ष, वक्ष से ज्यादा पुष्ट कूल्हे और कमर। क्या ये वही बानी थी जिसे स्कूल में लड़कियां बंगाल का जादू कहा करती थी? उसकी सहेली रजिया का भाई कहता था, अभी तक हम लड़के यही सोचते आए थे कि हर लड़की हिस्सा हिस्सा सुंदर होती है, पर तुम्हारी सहेली बानी का जादू तो सिर चढ़कर बोलता है, उसकी तरफ कोई 5 मिनट देख ले तो पागल हो जाए। रजिया के भाई की इस सराहना के सम्मोहन में वो उस रात सो नहीं पाई। कई कई बार रात में उठ उठकर अपने को टूटे दर्पण में देखा। आदमकद आईने में अपने को देखने की बेहद तड़प उठी थी उस रात। जाने कितनी बार जीवन में बानी इस ऊंचे लंबे दर्पण के लिए तरसी थी। जाने कितनी बार उसने अपनी कल्पना एक सौंदर्य साम्राज्ञी के रूप में की थी। जिस रात वो लाल साड़ी में वधुवेश में सजी थी, उस रात भी आसपास कहीं कोई बड़ा दर्पण नहीं था जिसमें एक झलक वो अपने को देख ले। थकी सहेलियों की ईर्ष्या सराहना के सहारे ही उसने अपने रूप की कल्पना कर ली थी। इतने वर्ष जब जब उसने पति की आंखों में झांकना चाहा, पति ने कभी दृष्टि नहीं उठाई। वो अखबार पढ़ता रहा या फाइलें। वो अभी तक यही समझती आ रही थी कि वो वही बानी है, सुरताल और लय का संगम, बंगाल का जादू, रूप गर्विता। अब ये दर्पण सिर्फ दर्प दुचलने के काम आ सकता था। घबराकर बानी ने दर्पण से नजर हटा ली। उसका पति अब तक आराम से बिस्तर पर लेट चुका था। बोला, कल इसे उठवाकर कमरे में रखवा देंगे। क्यों? रहने दो, यही ठीक है, बानी ने कहा और अपने कंधों पर से शॉल उतारकर दर्पण पर डाल दिया। गाथा में आप सुन रहे थे ममता कालिया की कहानी दर्पण। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।